ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के दोनों सदनों से सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से हुए पारित। विकास निर्माण में मौजूद कमी कमजोरियों को सुधारने के लिए विकास का ढांचा बदलने का प्रधानमंत्री ओली का है प्रस्ताव। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताओं को किया पेश। राष्ट्रीय गौरव वाली और बड़ी पूर्वाधार परियोजनाएं संपन्न करने को बजट में दी जाएगी प्राथमिकता। और श्रीलंका में बस हादसे में 21 तीर्थयात्रियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद के दोनों सदनों से सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित हुए। प्रतिनिधि सभा में नीति तथा कार्यक्रम के विषय में एकल और संयुक्त रूप में दर्ज सभी 37 संशोधन अस्वीकार कर दिए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम में विकास निर्माण के क्रम में दिखी कमी कमजोरियों को सुधारने के लिए विकास का ढांचा, गति और संस्कृति बदलने का प्रस्ताव किया गया है। आज प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की हुई अलग अलग बैठकों में नीति तथा कार्यक्रम पर विमर्श के दौरान उठे मुद्दों पर जवाब देने के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विकास निर्माण का काम हमेशा ऐसा लगता है कि हो रहा है, लेकिन कभी पूरा होता हुआ लगता नहीं, इसलिए विकास निर्माण के काम का तरीका बदलना जरूरी है। इस बात का जिक्र करते हुए कि आर्थिक वृद्धि के संवाहक के रूप में विकास किए जाने वाले क्षेत्र की पहचान को लेकर नीति तथा कार्यक्रम में कोई असमंजस नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि तथा वन, सूचना एवं प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग और भौतिक पूर्वाधार को मुख्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, एकीकृत परियोजना बैंक, लगातार सुधारों का भी जिक्र किया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि नीति तथा कार्यक्रम इस प्रकार लागू हो जिससे सबके मन में अपनत्व की भावना आए और प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें। इस दौरान उन्होंने देश में रोजगार सृजन, सुशासन की बहाली, जनता में आत्मविश्वास बढ़ाने और विकास निर्माण के काम को प्रभावकारी बनाने के हिसाब से कार्यक्रम क्रियान्वित होने की बात पर जोर दिया। इसी तरह राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2082-83 के नीति तथा कार्यक्रम पर बहस के दौरान सांसदों ने विभिन्न जरूरी सुधार के मुद्दों को उठाया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने विनियोजन विधेयक 2082-83 के सिद्धांत और प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं। अर्थमंत्री पौडेल ने आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक बजट के सिद्धांत और प्राथमिकता प्रस्तुत करते हुए कहा कि आर्थिक सुधार कर रोजगारी और उद्यमशीलता के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए सभी स्रोत साधन परिचालित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास के लिए निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही संघ, प्रदेशों और स्थानीय तहों के बीच समन्वय और सहकार्य पर जोर दिया जाएगा। अर्थमंत्री पौडेल ने बजट में समेटे जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र किया, जिनमें निर्माणाधीन राष्ट्रीय गौरव वाली और बड़ी पूर्वाधार परियोजनाओं को प्राथमिकता दिए जाने, जलविद्युत, पर्यटन, हवाई पूर्वाधार लगायत बातें शामिल हैं। बता दें कि प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री पौडेल द्वारा आज प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2082-83 के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर बहस होगी। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक इसी वैशाख 30 गते मंगलवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि मानव जाति और धरती के भविष्य से जुड़ी साझा समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सगरमाथा संवाद का आयोजन करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ओली ने आगामी जेठ 2 गते से 4 गते तक काठमांडू में आयोजित होने वाले सगरमाथा संवाद के संदर्भ में आज वीडियो संदेश जारी किया। संदेश में उन्होंने निरंतर प्रदूषित हो रहे वातावरण पर चिंता जताते हुए कहा कि बिगड़ते जलवायु पर ध्यान देना और इसका संरक्षण करना विश्व का साझा दायित्व है। राज्य व्यवस्था समिति के सदस्यों ने निजामती विधेयक में कूलिंग पीरियड को 2 वर्ष का रखने पर जोर दिया है। समिति की आज की बैठक में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निजामती व अन्य सरकारी सेवा से निवृत्त होने की तिथि से 2 साल पूरा न होने तक उस कर्मचारी को किसी भी संवैधानिक व अन्य सार्वजनिक पद पर नियुक्त न करने का प्रावधान होना चाहिए। बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताया कि संघीय निजामती सेवा का गठन, संचालन और सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक 2080 समिति से पारित हो गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। श्रीलंका में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के चट्टान से फिसलकर गहरी खाई में गिरने से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में हुआ, जहां बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में सवार यात्री किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। सुबह करीब 6 बजे के आसपास बस एक तीक्ष्ण मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठे और चट्टान से टकराकर बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इस हादसे की भयावहता और बढ़ गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ी रास्तों की खराब स्थिति और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों की भी चर्चा हो रही है। अधिकारियों ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद आज शाम भारतीय सेना ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयरफोर्स की तरफ से एयर मार्शल AK भारती और नौसेना के वाइस एडमिरल AN प्रमोद और मेजर जनरल SS शारदा शामिल हुए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। BBC के मुताबिक राजीव घई ने ब्रीफिंग के दौरान कहा, सेना ने सटीक निशाना बनाकर 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू वाले आतंकवादी भी शामिल थे। राजीव घई ने कहा, ये तीनों IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारत की कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा का भी उल्लंघन किया गया। ये उनकी अनिश्चित और घबराई हुई प्रतिक्रिया थी, जो दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में नागरिकों, गांवों और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर दी गई। इसमें कई नागरिकों की जाने गईं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद के दोनों सदनों से सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से हुए पारित। विकास निर्माण में मौजूद कमी कमजोरियों को सुधारने के लिए विकास का ढांचा बदलने का प्रधानमंत्री ओली का है प्रस्ताव। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताओं को किया पेश। राष्ट्रीय गौरव वाली और बड़ी पूर्वाधार परियोजनाएं संपन्न करने को बजट में दी जाएगी प्राथमिकता। और श्रीलंका में बस हादसे में 21 तीर्थयात्रियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।